राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 20। अहाब का आराम से युद्ध। आराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की। उनके साथ 32 राजा घोड़े और रथ थे। उसने शमरिया की घेराबंदी कर उससे युद्ध किया। इसके बाद उसने दूतों द्वारा नगर में इज़राइल के राजा अहाब को यह संदेश भेजा, यह बेन हदद का संदेश है। तुम्हारा सोना और चांदी मेरा है, तुम्हारी सबसे उत्तम पत्नियां और तुम्हारे बच्चे भी मेरे हैं। इज़राइल के राजा का उत्तर था, महाराज मेरे स्वामी, जैसा आप कह रहे हैं सही है। सब कुछ जो मेरा है आपका ही है और मैं खुद भी आपका हूँ। वे दूत दोबारा आए और उन्होंने यह संदेश दिया, यह बेन हदद का संदेश है। मैंने तुमसे कहा था, मुझे अपना सोना चांदी पत्नियां और संतान दे दो। फिर भी कल लगभग इसी समय मैं अपने सेवक तुम्हारे यहां भेजूंगा। वे तुम्हारे घरों की और तुम्हारे सेवकों के घरों की छानबीन करेंगे और वह सब लेकर यहां आ जाएंगे जो तुम्हें प्यारा है। यह सुन इज़राइल के राजा ने देश के सारे पुरनियों की एक सभा बुलाई और उन्हें यह कहा, देख लीजिए कैसे यह व्यक्ति हमसे झगड़ा मोल ले रहा है। वह मुझसे मेरी पत्नियां और संतान और मेरा सोना और चांदी छीनने की योजना बना रहा है। मैंने यह अस्वीकार नहीं किया है। सारे पुरनियों और सभा के सदस्यों ने एक मत में कहा, ना तो उसकी सुनिए और ना ही उसे सहमति दीजिए। अहाब ने बेन हदद के दूतों से यह कहा, महाराज मेरे स्वामी से जाकर कहना, आपने अपने सेवक से पहले जो कुछ चाहा था वह मैं करूंगा, किंतु यह मैं नहीं कर सकता। दूत लौट गए और दोबारा आकर अहाब को यह संदेश दिया। उनके लिए बेन हदद का संदेश था, देवता मुझसे ऐसा बल्कि इससे भी अधिक बुरा व्यवहार करे। यदि शमरिया की धूल मेरे थोड़े से पीछे चलने वालों की मुट्ठी भरने के लिए भी काफी हो। इज़राइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, उससे जाकर कह दो, वह जो हथियार धारण करता है विजय होकर वह उतारने वाले के समान घमंड ना करे। बेन हदद दूसरे राजाओं के साथ छावनी में दाख मधु पीने में लगा था। जैसे ही उसने अहाब का संदेश सुना, उसने सैनिकों को आदेश दिया, चलो मोर्चे पर। इस पर उन्होंने नगर के विरुद्ध मोर्चा बांध लिया। अहाब बेन हदद को हराता है। एक भविष्यद्वक्ता इज़राइल के राजा अहाब के सामने आ गए। उन्होंने राजा से कहा, यह यहावे का संदेश है, क्या तुमने इस बड़ी भीड़ को देखी है? यह देख लेना कि आज मैं इसे तुम्हारे अधीन कर दूंगा, तब तुम यह जान लोगे कि यहावे मैं ही हूं। अहाब ने भविष्यद्वक्ता से प्रश्न किया, कौन करेगा यह? भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, यहावे का संदेश यह है कि यह काम राज्यपाल ही करेंगे। तब अहाब ने प्रश्न किया, युद्ध की पहल कौन करेगा? भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, आप। अहाब ने राज्यपालों के सेवकों को इकट्ठा किया। कुल मिलाकर यह गिनती में 232 थे। उनके पीछे की पंक्तियों में 7,000 इजरायली सैनिक थे। इन्होंने दोपहर के समय कूच किया। इस समय बेन हदद 32 साथी राजाओं के साथ छावनी में बैठा हुआ दाख मधु के नशे में धुत था। राज्यपालों के सेवक सबसे आगे थे। बेन हदद ने भेद लेने के लिए भेदिए भेजे थे। उन्होंने लौटकर उसे यह सूचना दी, शमरिया से सेना निकल चुकी है। बेन हदद ने आदेश दिया, चाहे वे शांति के लक्ष्य से आ रहे हैं या युद्ध के लक्ष्य से, उन्हें जीवित ही पकड़ लेना। तब वे नगर से बाहर निकल पड़े, राज्यपालों के सेवक आगे आगे और उनके पीछे सेना। हर एक ने अपने अपने सामने के सैनिक को मार दिया। आरामी सेना के पैर उखड़ गए और इजरायली सेना ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मगर आराम का राजा बेन हदद अपने घोड़े पर घुड़सवारों के साथ भाग निकला। इज़राइल के राजा ने पीछा करके घोड़ों और रथों को खत्म कर दिया। आरामी सेना हार गई और उसमें बड़ी मार काट हुई। तब वह भविष्यद्वक्ता इज़राइल के राजा की उपस्थिति में जाकर कहने लगा, आप आइए और अपने आप को बलवंत करें, फिर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए कि अब आपको क्या करना है क्योंकि वसंत ऋतु में आराम का राजा आप पर हमला करेगा। आराम के राजा के मंत्रियों ने उससे कहा, उनके देवता पहाड़ियों के देवता हैं, यही कारण है कि वे हमसे अधिक शक्तिशाली साबित हुए हैं, मगर आइए हम उनसे मैदान में युद्ध करें, तब हम निश्चित ही उनसे अधिक मजबूत साबित होंगे। हम ऐसा करें, राजाओं को हटाकर सेनापतियों को उनकी जगहों पर खड़ा कर दें, और फिर हारी हुई सेना के समान घोड़े के लिए घोड़े और रथ के लिए रथ की सेना इकट्ठी करें, फिर हम उनसे मैदान में ही युद्ध करेंगे। निश्चित ही हम उनसे अधिक मजबूत साबित होंगे। राजा ने उनकी सलाह स्वीकार कर ली और वैसा ही किया भी। वसंत काल में बेन हदद ने आरामी सेना को इकट्ठा किया और इसराइल से युद्ध करने अफेक नगर की ओर बढ़ गया। इसराइली सैनिक भी इकट्ठे हुए, उन्होंने व्यूह रचना की और आरामियों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इसराइली सेना ने उनके सामने ऐसे डेरे खड़े किए कि वे भेड़ों के दो छोटे समूहों समान दिखाई दे रहे थे, मगर आरामी सेना पूरी तरह से मैदान पर छा गई थी। परमेश्वर के एक दूत ने आकर इसराइल के राजा से कहा, यह संदेश यहावे की ओर से है, इसलिए कि आरामियों का यह मानना है, यहावे सिर्फ पहाड़ियों का परमेश्वर है मगर घाटियों मैदानों का नहीं। मैं इस पूरी भीड़ को तुम्हारे अधीन कर दूंगा और तुम यह जान जाओगे कि मैं ही यहावे हूँ। 7 दिन तक वे इसी स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने डटे रहे। 7वें दिन युद्ध छिड़ गया। इसराइली सेना ने एक ही दिन में 1,00,000 आरामी पैदल सैनिकों को मार डाला। बाकी अफेक नगर को भाग गए। उनमें से बाकी 27,000 की मृत्यु उन पर दीवार के ढहने से हो गई। बेन हदद भी भागा और एक भीतरी कमरे में जाकर छिप गया। उसके सेवकों ने उससे कहा, सुनिए, हमने सुना है कि इसराइल वंश के राजा कृपालु राजा होते हैं। हम ऐसा करें, हम कमर में टाट लपेट लेते हैं, अपने सिर पर रस्सियां डाल लेते हैं और इसराइल के राजा की शरण में चले जाते हैं। संभव है वह आपको प्राण दान दे दे। तब उन्होंने अपनी कमर में टाट लपेट ली, सिर पर रस्सियां डाल ली और जाकर इसराइल के राजा से कहा, आपके सेवक बेन हदद की विनती है, कृपया मुझे प्राण दान दे। अहाब ने उनसे पूछा, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। वहां बेन हदद के मंत्री सही इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसे ही शुभ संकेत समझकर उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ, आपका ही भाई बेन हदद। राजा अहाब ने उन्हें आदेश दिया, जाओ उसे ले आओ। तब बेन हदद अहाब के सामने आया। अहाब ने उसे अपने रथ पर ऊपर बुलाया। बेन हदद ने अहाब को कहा, जो नगर मेरे पिता ने आपके पिता से छीने थे, मैं उन्हें लौटा दूंगा। आप अपनी सुविधा के लिए दमिश्क में अपने व्यापार के केंद्र बना सकते हैं, जैसा मेरे पिता ने शमरिया में किया था। अहाब ने बेन हदद से कहा, यदि तुम्हारी ओर से यही सुझाव है तो मैं तुम्हें मुक्त किए देता हूँ। तब उसने बेन हदद से संधि की और उसे मुक्त कर दिया। नबी द्वारा बेन हदद की मुक्ति का धिक्कार। यहावे के आदेश पर भविष्यद्वक्ता मंडल के एक भविष्यद्वक्ता ने अन्य सदस्य से विनती की, कृपा कर मुझ पर वार करो, मगर उसने यह विनती अस्वीकार कर दी। तब उस पहले ने दूसरे से कहा, इसलिए कि तुमने यहावे की आज्ञा तोड़ी है, यह देख लेना कि जैसे ही तुम यहां से बाहर जाओगे, एक शेर तुम्हें दबोच लेगा। हुआ भी यही, जैसे ही वह वहां से बाहर गया, एक सिंह ने उसे दबोच लिया और मार डाला। तब उसे एक दूसरा व्यक्ति मिला, उससे उसने विनती की, कृपया मुझ पर वार कीजिए। उस व्यक्ति ने उस पर वार किया और ऐसा वार किया कि वह भविष्यद्वक्ता चोटिल हो गया। तब वह भविष्यद्वक्ता वहां से चला गया और जाकर मार्ग में राजा का इंतजार करने लगा। उसने अपना रूप बदलने के उद्देश्य से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जैसे ही राजा वहां से गुजरा, उसने पुकार कर राजा से कहा, आपका सेवक युद्ध भूमि में गया हुआ था। वहां एक सैनिक ने एक व्यक्ति को मेरे पास लाकर कहा, इस व्यक्ति की रक्षा करना, यदि किसी कारण से मुझे लौटने पर यह यहां ना मिले, उसके प्राण के बदले में तुम्हारा प्राण लिया जाएगा। यदि यह नहीं तो तुम्हें उसके स्थान पर मुझे 35 किलो चांदी देनी होगी। मैं आपका सेवक जब अपने काम में जुट गया, वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही कथन के अनुसार किया जाएगा, तुमने खुद अपना निर्णय सुना दिया है। तब भविष्यद्वक्ता ने तुरंत अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दी और इज़राइल का राजा तुरंत पहचान गया कि वह भविष्यद्वक्ता मंडल में से एक भविष्यद्वक्ता है। तब भविष्यद्वक्ता ने राजा से कहा, यह संदेश यहावे की ओर से है, जिस व्यक्ति को मैंने पूर्ण विनाश के लिए अलग किया था, तुमने उसे अपने अधिकार में आने के बाद भी मुक्त कर दिया है। अब उसके प्राणों के स्थान पर तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे और उसकी प्रजा के स्थान पर तुम्हारी प्रजा। इज़राइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर शमरिया पहुंचा।